हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा नव्यांशी और आराध्या के जिद करने पर उनके साथ एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। नव्यांशी का फेवरेट इन्फ्लुएंसर लेट आया था, इस वजह से उन्हें वहां ज्यादा टाइम लग गया था। वैसे भी अक्षत की तरफ से कोई अलर्ट मैसेज नहीं मिला था, तो उन्हें यही लग रहा था कि वेद अब तक ऑफिस में ही है। क्लब के बाहर वो तीनों खड़ी अक्षत के आने का इंतजार कर रही थीं। गाड़ी खराब होने की वजह से नव्यांशी का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। वो अब तक कब का घर पहुंच चुके होते अगर उनकी गाड़ी खराब नहीं हुई होती। आराध्या ने घड़ी में टाइम देखा और नव्यांशी से पूछा, अक्षत ने रिप्लाई तो दिया था ना कि वो आ रहा है, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं भाई घर पहुंच गए हों? नव्यांशी कोई जवाब देती उससे पहले शिवांशा जल्दी से बीच में बोल पड़ी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। उन्हें पता चला तो वो बहुत डांटने वाले हैं हमें। सबसे पहले तो आप दोनों डरना बंद कीजिए, खुद के साथ साथ मुझे भी डरा रही हैं। अक्षत ने नॉर्मल रिप्लाई दिया था, वो बस पहुंचता ही होगा, आप तो जानती हैं कई बार वो सेफ्टी के चक्कर में थोड़ा स्लो ड्राइविंग करता है, टाइम बता देता तो हम थोड़ी देर इवेंट और एंजॉय कर लेते, नव्यांशी बोली। वो इस इवेंट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। उन तीनों में सबसे ज्यादा बेपरवाह नव्यांशी थी। अगर इस वक्त उसका मूड अपसेट था तो इस वजह से कि घर जाने के चक्कर में इवेंट बीच में छोड़ना पड़ा था। नव्यांशी का बस चलता तो पूरी रात वहां रुककर इवेंट एंजॉय करने वाली थी, लेकिन आराध्या और शिवांशा के साथ ऐसा नहीं था। शिवांशा ने घबराई नजरों से आराध्या की तरफ देखा तो उसने उसका हाथ सहलाते हुए धीमी आवाज में तसल्ली दी, मैं आपका डर समझ सकती हूँ, हम लोग तो फिर भी थोड़ी बहुत डांट सुनकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन आपको तो उनके साथ एक कमरे में रहना पड़ता है। डोंट वरी, भाई को इस बारे में कुछ पता नहीं है। शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में से रहना दिया था। वो मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि वेद को इस बारे में कुछ पता न चले। आपने आज तक मेरी एक बार भी नहीं सुनी है, पर इस बार सुन लीजिए, आई प्रॉमिस, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, वो कोई काम नहीं करूंगी जिससे वेद को मुझ पर गुस्सा आए। शिवांशा ने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। वहीं दूसरी तरफ वेद के ऑफिस से निकलते ही वंश खा जाने वाली निगाहों से अक्षत को घूर रहा था। अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाया और धीमी आवाज में कहा, अब आप तो ऐसे मत देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है, आप जानते हो नविदी कितनी जिद्दी हैं, मैंने उन्हें बोला था कि मैं उनके साथ चलता हूँ, ऐसे में कम से कम भैया को पता चलता तो उनका सारा गुस्सा मुझ पर निकलता, मुझे तो बता ही सकते थे, वहां सिर्फ नव्यांशी और शिवांशा भाभी ही नहीं आराध्या भी है, खामखा मेरी वाली को मुसीबत में डाल दिया, चलो उनके पीछे चलते हैं, शिवांशा भाभी वेद भैया को संभाल लेंगी, बाकी फिलहाल नव्यांशी और आराध्या को भाई के गुस्से से बचाना है, वंश बोला। उसने अक्षत को साथ आने को कहा और अपनी गाड़ी लेकर वेद के पीछे निकल गया था। उन सब के जाने के बाद प्रतीक अकेला बचा था और उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट थी। पूरी चौहान फैमिली भी एक साथ चली जाएगी, फिर भी आज वो तीनों वेद भैया की डांट से नहीं बच पाएंगी। प्रतीक भी घर जाने के लिए निकल गया था। प्रतीक चौहान फैमिली का हिस्सा बेशक था, पर वो चौहान पैलेस में रहने के बजाय अपनी वाइफ के साथ अपने अलग घर में रहता था। वहीं दूसरी तरफ नव्यांशी, आराध्या और शिवांशा जब अक्षत के आने का इंतजार कर रही थी तब उन्हें दूर से गाड़ी आती दिखाई दी। वो चौहान फैमिली की गाड़ी थी, जिसे देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, पर यह राहत कुछ पलों की थी। गाड़ी के पास आते ही उन तीनों के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। गाड़ी के अंदर से वेद निकला था। शिवांशा तो वेद को देखते ही आराध्या और नव्यांशी के पीछे जाकर छुप गई थी। उन तीनों की नजरें नीची थीं। वेद ने बाहर निकलते ही आराध्या और नव्यांशी की तरफ घूर कर देखा। भाई ये जगह सेफ? इससे पहले कि नव्यांशी उस जगह के सेफ होने के बारे में सफाई दे पाती, हॉल से एक लड़का और लड़की बाहर आए जिन्होंने काफी ड्रिंक कर रखी थी। लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, पर इस वक्त वो लड़की इतने नशे में थी कि उसे रोकने तक की हालत में नहीं थी। वेद ने सिर हिलाया और बेहद सर्द लहजे में कहा, सो कोई ये कहने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सेफ है, मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, चुपचाप दोनों गाड़ी में बैठो। और शिवांशा कहाँ है? बोलते हुए वेद ने इधर उधर देखा। वहीं वेद के मुंह से शिवांशा का जिक्र सुनते ही शिवांशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन बुदबुदा कर बोली, अब तक आपने मेरी नहीं सुनी, मैं ही बेवकूफ हूँ जो ये सोच लिया कि इस बार आप मेरी सुनोगे। वेद के कहते ही नव्यांशी और आराध्या दोनों इधर उधर हो गई थी और उनके पीछे छुपी शिवांशा वेद के ठीक सामने थी। वेद ने एक पल के लिए शिवांशा को देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थी। उसकी ड्रेस काफी रिवीलिंग थी और वेद को उसे इस तरह देखने की आदत बिल्कुल नहीं थी। वाओ, ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, वेद ने तंज भरे लहजे में कहा। उसके मुंह से ताना सुनकर शिवांशा ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। वो भी वेद के सामने इस तरह नहीं आना चाहती थी। अगर शिवांशा का बस चलता तो वो जमीन में समा जाना ज्यादा बेहतर समझती बजाय वेद के सामने इस तरह इतनी शॉर्ट रिवीलिंग ड्रेस में आने के। इस बीच अक्षत और वंश भी वहां पर पहुंच गए थे। वो दोनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर आए तो उन्होंने देखा कि वेद के सामने शिवांशा नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। वहीं आराध्या और नव्यांशी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस मोमेंट पर वेद से पहले कौन बात करे। उनकी किस्मत अच्छी थी जो वंश और अक्षत वहां पहुंच गए थे। आराध्या जल्दी से वंश के पास आई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड वंश तुम आ गए, एक गाड़ी में एडजस्ट होना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता, ऐसा करते हैं मैं और नव्यांशी तुम्हारे साथ चलते हैं, भाई शिवांशा भाभी को लेकर चले जाएंगे। हाँ सही कहा, हम चारों एक गाड़ी में चलते हैं, भाई भाभी को लेकर चले जाएंगे, नव्यांशी भी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गई थी।
वहीं उन दोनों के अचानक पाला बदलने पर शिवांशा उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ हो। वेद की गाड़ी में वो सब आराम से जा सकते थे, फिर भी अनकंफर्टेबल होने का नाम लेकर वो दोनों शिवांशा को फंसाकर दूसरी तरफ निकल ली थी। वेद ने उनकी तरफ देखा और भौहें उठाकर कहा, कहो तो प्रतीक को कॉल करके दो गाड़ियां और मंगवा लेता हूँ ताकि सब कंफर्टेबल होकर आराम से घर जा सको। क्या लगता है चौहान पैलेस के अलावा तुम दोनों और कहीं रहती हो जो मेरे सवालों से बच पाओगी?
नहीं भाई, वो ऐसी बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रहे हैं, नव्यांशी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तभी वेद बोला, अभी तुरंत घर के लिए निकलो, नो मोर एक्सप्लेनेशंस ऑन रोड। इतना कहकर वेद ने टॉपिक को वहीं पर खत्म कर दिया था, लेकिन आराध्या और नव्यांशी भी जानती थीं कि टॉपिक खत्म होने और बात का पूरी तरह खत्म होने में फर्क था। नव्यांशी और आराध्या जल्दी से अक्षत और वंश के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अंदर बैठते हुए नव्यांशी ने अक्षत को डांटते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे तो पहले से पता था कि तुम हमारे भाई नहीं दुश्मन हो, क्या जरूरत थी भाई को इस बारे में बताने की? अगर उन्हें पता चल भी गया था तो हमें पहले अवेयर नहीं कर सकते थे क्या?
ओ रियली, गलती खुद करो और उल्टा हम पर गुस्सा करो। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अकेले ऐसी जगह पर मत आओ, अगर जाना भी है तो वेद भाई से एक बार बात कर लो, साथ में मुझे भी लेकर जा सकते थे। ऊपर से खुद की तरह शिवांशा भाभी को भी उल्टे सीधे कपड़े पहना दिए, देखा नहीं भाई के सामने बेचारी कैसे एम्बेरस्ड हो गई थी। अक्षत उल्टा नव्यांशी को ही सुनाने लगा था।
शिवांशा का जिक्र आने पर आराध्या ने मायूस होकर कहा, मुझे सच में भाभी के लिए बुरा लग रहा है, हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया, वो तो आना भी नहीं चाहती थी, ऊपर से अब उन्हें अकेले भाई के साथ घर जाना पड़ रहा है, रास्ते में पक्का उनकी क्लास लगने वाली है, तुम इससे उन्हें बचा नहीं सकती हो आराध्या, वंश ने उसे समझाते हुए कहा। घर जाने पर तुम लोग सोने का बहाना बनाकर फिलहाल रात के लिए मामले को शांत कर सकती हो, लेकिन उन्हें तो वेद भाई के रूम में ही रहना है। बाकी मुझे तुमसे इसे मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं थी और ना ही नवी तुमसे, फिर भी हमें देखना चाहिए कि भाई उन्हें ज्यादा न डांटे, अक्षत बोला। उसे भी शिवांशा की परवाह हो रही थी। उन सब के कहने पर वंश ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की और वो गाड़ी के अंदर से ही वेद और शिवांशा को देख रहे थे। वेद और शिवांशा अभी भी वेद की गाड़ी के पास खड़े हुए थे। शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं, तो वहीं वेद का तो उसकी तरफ देखते हुए भी नहीं बन रहा था। उसकी नज़र शिवांशा के हाथों पर गई तो वो हल्का सा कांप रहे थे। वेद ने महसूस किया कि बाहर थोड़ी ठंड थी और शिवांशा ने जैसे कपड़े पहने थे उसे ठंड लगना लाजिमी था। वेद ने गहरी सांस ली और अपना जैकेट निकालकर शिवांशा के कंधे पर अच्छे से सेटल करने लगा ताकि उसे ठंड न लगे। इस बीच शिवांशा ने नज़र उठाकर वेद की तरफ देखा। वेद को इस तरह शिवांशा की परवाह करते देख गाड़ी में उन चारों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अक्षत ने धीमी आवाज में कहा, लगता है हम बेवजह उनके लिए डर रहे हैं। वेद भैया जैसे हिटलर से शादी करने की जो लड़की हिम्मत कर सकती है, उन्हें अपने प्यार में बांध कर रख सकती है, उन्हें उनके गुस्से को हैंडल करना भी आता होगा ना। हाँ, अब तो लग रहा है कि भाभी भाई को समझा देंगी ताकि सुबह हम बच जाएं। जाते ही सबसे पहले अपने कमरे में सोने के लिए चले जाएंगे और भाई कभी इतनी रात को हमें नींद से नहीं जगाने वाले हैं, नव्यांशी बोली। उन्हें कुछ तो राहत थी कि वेद शिवांशा पर गुस्सा नहीं कर रहा था और जिस तरह से वो उसके साथ प्यार से पेश आ रहा था उससे साफ था कि इस बार वेद शायद उनकी इस गलती पर उन्हें माफ कर दे। शिवांशा और वेद की तरफ से बेफिक्र होने के बाद वंश ने गाड़ी स्टार्ट की और उन्हें वहां से लेकर निकल गया था। वहीं शिवांशा ने वेद की आंखों में जज्बात देखे तो वो धीमी आवाज में बोली, मैं नहीं जा। शिवांशा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले वेद उसे बीच में काटते हुए सख्त आवाज में बोला, गाड़ी में बैठो। वेद के लहजे में काफी बेरुखी थी, उसने शिवांशा का इंतजार भी नहीं किया और खुद गाड़ी में जाकर बैठ गया था। वहीं अब शिवांशा को सच में उससे डर लगने लगा था। थोड़ी देर पहले सब शिवांशा की वजह से बेफिक्र हो गए थे, वो नहीं जानते थे कि वेद के उसूल सबके लिए एक जैसे थे, चाहे वो उसके भाई बहन हो या वो लड़की जिसे वो सबके सामने अपनी पत्नी बताता था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, क्या लगता है शिवांशा वेद को मना पाएगी? वैसे अभी तो उसे उसके गुस्से को भी झेलना बाकी है। वैसे आज का चैप्टर आपको कैसा लगा समीक्षा में जरूर बताइएगा।